ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। मध्य पूर्व में रहे 17 लाख से अधिक नेपाली सुरक्षित हैं, परराष्ट्र मंत्रालय ने दी जानकारी। मध्य पूर्व में रहे नेपालियों की सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं, मंत्री बालानंद शर्मा का कथन। प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए सुरक्षा की सभी तैयारियां हो गई हैं, गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल का कथन। और ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई के मारे जाने के बाद पाकिस्तान के कराची में हुआ हिंसक प्रदर्शन, 9 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। नेपाल सरकार ने मध्य पूर्व में विकसित घटनाक्रम के बाद उस क्षेत्र में रहे 17 लाख से अधिक नेपालियों से संबंधित देश के सुरक्षा निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षित रहने का आग्रह किया है। ये बताते हुए कि परराष्ट्र मंत्रालय के जरिए उस क्षेत्र में रहे नेपाली नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार आवश्यक काम और पहल कर रही है, सरकार ने सुरक्षा सावधानी अपनाने का आग्रह किया है। आज परराष्ट्र मंत्रालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहसचिव कृष्ण प्रसाद ढकाल ने कहा कि मध्य पूर्व में रहे नेपाली अब तक सुरक्षित हैं और नेपाल सरकार घटनाक्रम को नजदीक से देख रही है। मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका महाशाखा के प्रमुख रामकाजी खड़का ने कहा कि नेपाली नागरिकों की सुरक्षा के लिए मध्य पूर्वी देशों में मौजूद 8 दूतावासों और 2 कंसुलर सेवाओं से सूचना जारी कर समन्वय किया जा रहा है। साथ ही यह भी बताया गया कि मध्य पूर्व में जारी युद्ध के कारण वीजा और टिकट लेकर गंतव्य देशों में जाने के लिए विमानस्थल पहुंचे और यूरोप व अमेरिका के जाने के दरमियान ट्रांजिट विमानस्थलों पर अटके हुए नेपालियों को समस्या झेलनी पड़ रही है। सरकार ने कहा है कि मध्य पूर्व के द्वंद्वरत देशों में कार्यरत नेपाली नागरिकों की सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। मध्य पूर्व एशिया में द्वंद्व, ईरान पर हमला और नेपाली नागरिकों की सुरक्षा संबंध में आज प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में हुई मंत्रिपरिषद बैठक में ये बात बताई गई। ये जानकारी परराष्ट्र मंत्री बालानंद शर्मा ने दी। नेपाली नागरिकों के सुरक्षित होने की जानकारी देते हुए मंत्री शर्मा ने बताया कि विभिन्न देशों की यात्रा में नागरिकों के लिए उन्हीं स्थानों पर सुरक्षित रहने की व्यवस्था की गई है। फागुन 21 को होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए संचालित घर घर मतदाता शिक्षा अभियान आज समाप्त हुआ है। निर्वाचन आयोग ने सभी 753 स्थानीय तहों में स्वास्थ्य स्वयं सेविका मार्फत 3 गति से घर घर मतदाता शिक्षा अभियान चलाया गया था। निर्वाचन आयुक्त डॉ जानकी कुमारी तुलाधर ने कहा कि मतदाता शिक्षा अभियान प्रभावकारी है, आवश्यकता अनुसार स्वयं सेविकाओं द्वारा स्थानीय मातृभाषाओं में भी मतदाता शिक्षा दी गई है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि प्रतिनिधि सभा चुनाव के दिन दमकल, एम्बुलेंस, शव वाहन, पेयजल वाहन, दूध, फल फूल, सब्जी, मीट, मछली, पेट्रोलियम, लगायत वाहन संचालन के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी। इसी तरह दूरसंचार सेवा, बिजली, पेयजल, गटर लगायत की मरम्मत में उपयोग होने वाले वाहनों, अस्पताल सेवा, चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के वाहनों को घर से अस्पताल और अस्पताल से घर जाने आने के लिए भी पास की जरूरत नहीं होगी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक हवाई सेवा के यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों को विमानस्थल से घर या होटल और उन जगहों से विमानस्थल तक जाने के लिए भी पास जरूरी नहीं है। प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देल ने आज हिटौड़ा स्थित मध्य प्रतना मुख्यालय का निरीक्षण दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रतना के जिम्मेवारी क्षेत्र में होने वाले आगामी प्रतिनिधि सभा चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था सहित समग्र स्थिति के बारे में जानकारी ली। सैनिक जनसंपर्क तथा सूचना निदेशालय ने बताया। मौके पर प्रधान सेनापति सिग्देल ने सभी ओहदों के सैनिकों को सौंपे गए दायित्वों को उत्कृष्ट ढंग से निर्वहन करने का निर्देश किया। उन्होंने प्रदेश कमांड पोस्ट और निर्वाचन सेल के पदाधिकारियों के साथ अंतर्क्रिया भी की, निदेशालय ने जानकारी दी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415 हैश डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। प्रतिनिधि सभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। निर्वाचन आचार संहिता का उल्लंघन रोकने तथा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए योजनाबद्ध ढंग से तैयारी की जा रही है। ये जानकारी मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर ने दी है। प्रदेश से जुड़े नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं और विशेष निगरानी रखी जा रही है। आठों जिलों के मतदान केंद्रों की सुरक्षा के संदर्भ में अनुगमन और निरीक्षण किया जा चुका है। कार्यालय के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल 2160 मतदान स्थलों में से 1246 मतदान स्थल अतिसंवेदनशील श्रेणी में हैं। भारतीय सीमा से जुड़े अधिकांश मतदान स्थल अतिसंवेदनशील हैं। इनकी निगरानी और सुरक्षा उपायों को लेकर योजनाबद्ध तरीके से काम आगे बढ़ाया जा रहा है। ये जानकारी मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता कमल थापा ने दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों की सुरक्षा समितियों के अध्ययन के आधार पर अतिसंवेदनशील श्रेणी निर्धारित किया गया है। मध्य प्रदेश में प्रतिनिधि सभा के लिए 32 निर्वाचन क्षेत्र हैं। इनमें 1246 मतदान स्थल अतिसंवेदनशील, 755 मतदान स्थल संवेदनशील और 159 मतदान स्थल सामान्य श्रेणी में रखे गए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतीय राज्य महाराष्ट्र के नागपुर जिले के काकटोल में विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले कारखाने में धमाका हुआ, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई। आज सुबह 6:30 बजे हुए धमाके में 18 लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज नागपुर के ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल में चल रहा है। बीबीसी के मुताबिक एसपीएल एक्सप्लोसिव कंपनी में धमाका हुआ था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना की जानकारी एक्स पोस्ट के जरिए दी है। ये कंपनी नागपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। इस कंपनी में खनन व निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक आदि सामान बनाए जाते हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार धमाका डेटोनेटर की वजह से हुआ। ये एक छोटी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल बड़े विस्फोटकों को एक तय समय पर सक्रिय करने के लिए किया जाता है। इस फैक्ट्री में बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं काम करती हैं। धमाका सुबह की शिफ्ट में हुआ जब महिलाएं ड्यूटी पर थीं। बताया जा रहा है कि मरने वालों में महिलाओं की काफी संख्या है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के मौत के बाद पाकिस्तान के कराची में हिंसक प्रदर्शन हुआ है। बीबीसी के मुताबिक शहर के अमेरिकी कॉन्सुलेट के बाहर हुए इस हिंसक प्रदर्शन में 9 लोगों की मौत हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोगों ने वाणिज्य दूतावास का गेट तोड़ा और रिसेप्शन के पास स्थित सिक्योरिटी रूम की खिड़कियां तोड़ दीं। मजलिस ए वहदत मुस्लिमीन के प्रवक्ता ने कहा कि ये एक सार्वजनिक प्रदर्शन था जिसमें लोग आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के बाहर जमा हुए। उन्होंने दावा किया कि इन लोगों पर कॉन्सुलेट के अंदर से भी गोलियां चलाई गईं। कराची पुलिस के अधिकारी डॉ समी सैयद ने पुष्टि की कि प्रदर्शन के दौरान 9 लोग मारे गए और 8 लोग घायल हुए। कराची के अलावा इस्लामाबाद में भी प्रदर्शन हुए। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान में भी प्रदर्शन काफी हिंसक हो गया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के गृहमंत्री जियाउल हसन लांजर ने इस प्रदर्शन के संबंध में कराची के अतिरिक्त आईजी से रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले तत्वों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्य पूर्व में रहे 17 लाख से अधिक नेपाली सुरक्षित हैं, परराष्ट्र मंत्रालय ने दी है जानकारी। मध्य पूर्व में रहे नेपालियों की सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं, मंत्री बालानंद शर्मा का कथन। प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए सुरक्षा की सभी तैयारियां हो गई हैं, गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल का कथन। और ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई के मारे जाने के बाद पाकिस्तान के कराची में हुआ हिंसक प्रदर्शन, 9 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।